Hare Krishna. This lecture was given in Dwarka Temple, Saturday afternoon love feast on 30 January 2016 by myself, Prashant Mukund Das.
Natimrandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasme Shri Gurve Nama Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadate Sabda Kantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagan Lalita Shri Vishakhan Vitamstam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishbhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है आज के प्रवचन में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि भगवान की सेवाएं किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आज हमारे एक महान संत श्री जयदेव गोस्वामी महाराज का क्या है अपीयरेंस डिसअपीयरेंस तिरुभाव डिसअपीयरेंस। तो आज डिसअपीयरेंस है जयदेव गोस्वामी जी का। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जयदेव गोस्वामी कौन थे, उन्होंने कैसे अपने जीवन में भक्ति को प्रगाढ़ता से पकड़ा और फिर आगे उन्होंने जिस तरह सेवा करी हमें भी किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। तो हमारी जो ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, तो ये सक्सेशन ये लाइन है, इसके अंदर अनेकों गोस्वामी अनेकों सेंट अनेकों भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण भगवान की सेवा में रात दिन एक कर दिया और फिर भगवान उनकी सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जी भगवान हमने तो देखा नहीं, क्या भगवान हमारे साथ आएगा? अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो क्या भगवान हमारी मदद करेगा? हम रात दिन मांगते रहते हैं हमारी ये मदद कर दो हमारी वो मदद कर दो, लेकिन क्या सच में भगवान मदद करेंगे? हाँ, तो इसका सच है कि भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम में, क्या कहते हैं सब लोग द्वारा दोहराइए, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। फिर से बोलिए, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। भगवान नहीं आते हैं, अगर जब तक दृढ़ता पूर्वक होकर भगवान का नाम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान आने वाले नहीं है। अब देखिए हमारे बहुत सुंदर भक्त हुए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वो अपने जीवन में अनेकों अनेकों भजन लिखे उन्होंने, ऐसे भजन जिनको सुनने मात्र से पत्थर भी पिघल जाते थे। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हाँ, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि रावण की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो वो वाली चीज नहीं है कि हनुमान जी की पूछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, ऐसा कैसे हो गया? तो यहां पर जो वर्णन है, नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार के भजन गाते थे कि सुनने वाले का हृदय जो है ना पिघल जाता था, सुनने वाले के पत्थर जो थे सामने, पत्थर पेड़ पौधे ये भी मेल्ट होने लग जाते थे। इस तरह से साक्षात लोगों ने देखा, और बहुत पुराने नहीं, अभी 400 साल पहले ही आए हैं, 400 ईयर्स बैक। तो वो अपने एक भजन में लिखते हैं, हरि हरि कृपा करी राखा निज पदे, काम क्रोध छय जने लैया फिरे नाना स्थाने, विषय भुजाय नाना मते। हे हरि, आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में रखिए। प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे अपने चरणों में रखिए, काम क्रोध आदि 6 शत्रु मुझे इधर उधर ले जाकर अनेक प्रकार से विषयों का भोग कराते हैं। तो हमारे 6 शत्रु हैं, है ना, पड़ोसी शत्रु हैं, ऑफिस वाले शत्रु हैं, घर में सास ससुर शत्रु हैं, वो है ही हैं, लेकिन 6 शत्रु जो हमारे अंदर विराजमान है वो कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 शत्रु है, 6 एनिमीज, 6 शत्रु, और आपको हमेशा फायरिंग करते रहते हैं अंदर से बैठकर, और आप जलते रहते हैं, कभी काम वासना से, कभी क्रोध से, कभी लोभ के कारण, कभी परिवार से आसक्ति के कारण, कभी ईर्ष्या के कारण, तो इस प्रकार से, और कभी अहंकार के कारण, ये शत्रु अंदर है। तो वो ये कहते हैं कि भगवान मुझे अपने चरणों में रखिए, ताकि आपके चरणों में रहने से ये 6 प्रकार के शत्रुओं का क्या होगा, दमन हो जाएगा। जैसे कालिया नाग है ना, उसके भी बहुत सारे फन थे, तो बताते हैं उसके फन अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, लेकिन भगवान ने कहा कि तुझे मैं अपने चरणों से क्या करूंगा, कुचल दूंगा, कुचल दिया। कालिया दमन लीला में जब हम सुनते हैं तो कालिया नाग को भगवान ने अपने चरणों से उसके ऊपर डांस किया, और डांस करने से उसको दबा दिया। अभी कालिया नाग को भगवान ने कहा कि यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ, तो उसने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे आपका जो पक्षी वाहन है गरुण, वो मुझे खा जाएगा, क्योंकि मैंने एक बार उसके प्रति अपराध किया था। हमारे इस जलाशय के अंदर यमुना में जब वो मछलियां खाने आया तो मैंने उसको रोक दिया, मना कर दिया, और वो उसके कारण क्या कर सकता है, मुझे भक्षण कर सकता है। तो भगवान ने कहा कि जिसके फनों के ऊपर मेरे चरणों के निशान है उसको कोई गरुण नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से कोई अकाल मृत्यु, कोई परेशानी उस व्यक्ति को नहीं सताती है जिसने भगवान के चरण का आश्रय लिया है। तो भगवान के चरणों का आश्रय कलयुग में लेने का क्या तरीका है, भगवान के नाम को भजन करना, दोनों हाथों को ऊपर करके क्या बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आगे कहते हैं, हैया माया रदास करी नाना अभिलाष, तोमार स्मरण गैला दूरे, अर्थ लाभ अय्या आशे कपट वैष्णव वेशे, भ्रमिया भूलया घरे घरे। आपको भूलकर मैं माया का दास बन गया तथा अनेक भौतिक इच्छाओं की कामना करने लगा। तो माया का दास, 2 प्रकार के दास हैं, एक है माया दास और एक है कृष्ण दास। तो कृष्णदास होते हैं भगवान के भक्त, भगवान के सेवक, और मायादास होते हैं जो रात दिन माया के चक्कर में घूम रहे हैं, ऑफिस में ओवर टाइम, संडे को नो टाइम। फिर एक दिन मृत्यु आ जाती है और फिर वो कहते हैं थोड़ा सा समय दे दीजिए भगवान के नाम भजन के लिए, तो फिर मृत्यु के जो यमराज उसके लीडर है वो क्या कहते हैं, नो टाइम, अब समय नहीं है, समय जितना था वो तुमने व्यर्थ ही गवा दिया इधर उधर माया के दास बन के। अभी कृष्ण दास बनने का निर्णय हमें आज लेना पड़ेगा, कल का क्या भरोसा, मृत्यु आ जाए, पता नहीं इस मंदिर के गेट से बाहर निकले, डरा नहीं रहे आपको, लेकिन हो सकता है आ जाए, फिर क्या करेंगे आप। तो इसलिए कहते हैं, इसी कारणवश मैं आपको पूर्ण रूपेण भूल गया, धन प्राप्ति की आशा में मैं वैष्णव वेश धारण कर लोगों के घर घर में घूमता रहता हूं, और अब मैं समझ गया हूं कि वैष्णव का वेश धारण करने से कम मैं आपका स्मरण कर पाता हूं। जैसा वेश बोलते हैं उसी प्रकार का स्मरण होता है व्यक्ति को। अगर आप घर में यज्ञ करवाएं, हवन करवाएं, तो कहते हैं दिवाली की पूजा करें तो कहते हैं धोती कुर्ता पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, इससे क्या है, एक चेतना में बदलाव आता है ना। पूजा करते वक्त नई नई साड़ी पहनती है माताएं, पुरुष लोग धोती कुर्ता कुर्ता पजामा पहनते हैं, वैसे ही अगर हम वैष्णव वेश धारण करें, तिलक लगाएं, धोती कुर्ता पहने, कंठी माला धारण करें, तो भले ही हम कृष्ण भक्त बने ना बने, लेकिन कृष्ण भक्त बनने की प्रक्रिया में हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आनंद आने लगता है हमको, हाँ हमें भक्त बनना चाहिए बनना चाहिए। कई कई वर्ष निकल जाते हैं, लोग तिलक नहीं लगाते, धोती कुर्ता नहीं पहनते ना, तो उनकी चेतना में बदलाव आने में बहुत टाइम लगता है। उनको लगता है अगर हम पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, बस हम यही थॉट प्रोसेस में सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग नहीं, बी स्ट्रॉन्ग, आप कुछ भी करिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट पुट अ तिलक, तिलक लगाइए, धोती कुर्ता धारण करिए, या माता लोग साड़ी लगाएं, पहने तिलक लगाएं, हाथ में कंठी माला, हाथ में जप माला, गले में कंठी माला धारण करें, आप देखिए आपका जीवन में आपको लगेगा यस समथिंग इज हैपनिंग गुड, कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, समथिंग इज हैपनिंग गुड। हाँ, तो वो ये बता रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं, अनेक दुखेरा परे लाया छिला ब्रजा पूरे, कृपा डोरा गलाया बंधिया, देवा माया बलत्कारे, खासिया से या डोरे, भवकुप दिला के डारिया। आप मुझे अनेक दुखों के पश्चात दयावश अपनी कृपा रूपी रस्सी को मेरे गले में बांधकर वृंदावन वापस ले आए, परंतु आपकी बारंगा शक्ति ने ये रस्सी खोलकर पुनः मुझे संसार कूप में धकेल दिया। तो कहते हैं वृंदावन जाने के बाद भी व्यक्ति को माया नहीं छोड़ती है, तो वृंदावन जाना आपकी मुश्किलों का समाधान नहीं है। वृंदावन जाने के लिए, वृंदावन जाने से उत्तम है वृंदावन को अपने हृदय में लेके आना। तो कल हमारे मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे भी यही कारण है। द्वारका से भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा को खींचकर वृंदावन ले जाना चाहती थी कहां, गोपियां। गोपियों से कितना प्रेम करते थे कृष्णा कि वो उनको छोड़ करके 11 साल 56 दिन की उम्र में चले गए थे मथुरा, और 30 साल की उम्र में मथुरा से चले गए थे द्वारका। अभी द्वारका से एक बार वहां पर जो कुरुक्षेत्र स्थान है वहां हुआ सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण में द्वारका से भगवान आते हैं, तो वृंदावन वासी सोचते हैं अभी तो काफी वर्ष निकल गए हैं कृष्ण का दर्शन किए, चलो कृष्ण को एक बार मिलाते हैं। तो जब कृष्ण से मिलने आते हैं कुरुक्षेत्र में, तो देखते हैं कि ये तो कृष्ण वो वाला कृष्ण नहीं है जो हमारा कृष्ण था, ये कृष्ण तो मुकुट लगाता है, तलवार है इसके हाथ में तो, और ये तो राजा जैसा लगता है, हमारा कृष्ण तो ग्वाला था, पगड़ी लगाता था, मोर पंख लगाता था, और गाय चराता था, मक्खन चुराता था, और इतना सुंदर था, ये तो कोई और है, ये नहीं हमारा कृष्ण, ये हमारे कृष्ण नहीं है। जब इस प्रकार से उन्होंने सोचने लगी, तो फिर सारी गोपियों ने सोचा क्या करें, इन कृष्ण को कहां ले चलते हैं, वृंदावन। वृंदावन में जब ये प्रवेश करेंगे तो फिर इनका क्या है, रूप परिवर्तन हो जाएगा, ये वृंदावन वासी बन जाएंगे। देखा जाए तो वैसे वृंदावन का भगवान कभी परित्याग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपनी लीलाओं में दिखा रहे हैं कि कैसे द्वारकाधीश को वृंदावन ले जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है, जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ मतलब जगत के जो नाथ है, तो उनको ले जा रही है खींचकर। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वृंदावन ले जाना होता है तो उनकी रस्सी खींची जाती है, तो रस्सी खींचकर कहां ले जाना है, वृंदावन नहीं, वृंदावन तो बहुत दूर है यहां से, अपने हृदय रूपी वृंदावन जहां परमात्मा सदा विराजमान है वहां लेके जाना है। और आपके हृदय में इतनी आनंद की स्फूर्ति होगी ना जब आप भगवान का रथ खींचेंगे, और ये सोचते हुए ये मैं अपने हृदय में ले जा रहा हूं, कृष्ण मेरे हृदय में आ जाओ आ जाओ, आ जाएंगे भगवान, एंटर कर जाएंगे। तो वो जो है ना स्थिति, वही है रथ यात्रा एक्चुअली। कहते हैं रथस्चे वामनम दृष्टा पुनर्जन्मना विद्यते, रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ को देखने से कोई व्यक्ति अगर देख लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। सोचिए, नो रिपीट बर्थ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा अगर वो सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ में जगन्नाथ को बैठा हुआ देख लेता है। दृष्टवा वामनम, वामन को बैठे हुए देखकर, रथस्य वामनम दृष्टवा पुनर्जन्मना विद्यते, उसका पुनर्जन्म होगा ही नहीं। तो इस प्रकार की कृपा भगवान करते हैं, तो अपने हृदय में वृंदावन लाना है। लोग जाते हैं वृंदावन हर वीकेंड के ऊपर, एक महीने में जब स्ट्रेस हो जाता है कुछ चिल आउट करके आते हैं, तो कहां जाते हैं चिल आउट करने के लिए, वृंदावन। वृंदावन में जाएंगे क्या करेंगे, बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और बांके बिहारी के बाहर क्यों जाते हैं, वहां पर जो ना लस्सी कचौड़ी मिलती है ना, प्रभु जी क्या बताएं आपको, अमेजिंग। श्री रुक्मणी द्वारकाधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौड़ निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के बाहर जो रसगुल्ले वो मिलती है ना, रस मलाई, रबड़ी और लड्डू पेड़े, ऐसा तो कहीं मिलता ही नहीं है प्रभु जी। आपने खाया वृंदावन में बांके बिहारी? आप कभी गए वृंदावन? लोग हमसे पूछते हैं हम तो वृंदावन जाते हैं लेकिन पूरी खाने या लस्सी पीने नहीं, हम वहां जाते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए। हाँ, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। वृंदावन कैसा स्थान है? रम्य स्थान है और दिव्य चिंतामणि पत्थर का बना हुआ है। चिंतामणि वो रत्न है जिसके चिंतन मात्र से, ऐसा मणि है जिस चीज को छू दो वो सोना बन जाए, पारस मणि जैसा चिंतामणि रत्न, महंगा, उसी से भगवान का धाम बना हुआ है। पूरा 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 धाम भगवान का चिंतामणि पत्थर का बना हुआ है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्ष्मी सहस्त्र समरम सेव्यमानम। तो वहां पे बताते हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान के सेवा करती हैं, हजारों लक्ष्मियां, हम एक लक्ष्मी के पीछे मायादास बन जाते हैं। और भगवान की अगर हम दास बने तो हजारों लक्ष्मियां आपकी भी दासी बन सकती हैं। हाँ, लक्ष्मी जी कहती हैं भागवतम के पंचम स्कंद के अंदर, पांचवें स्कंद में, कि मैं असलियत में अनुग्रह करती हूं तो उसी व्यक्ति पर जो कृष्ण भक्त है, वरना क्या होता है, बाकी लोगों के पास धन तो आता है लेकिन वो व्यर्थ ही चला जाता है। और उसने प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं रावण का, कहते तो रावण ने तीनों लोगों की संपत्ति प्राप्त कर ली लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एंड में मारा गया और तीनों लोगों की संपत्ति भी चली गई। तो इस तरह से जो व्यक्ति जबरदस्ती फोर्सफुली लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है बस उसका दी एंड हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का दास बनता है, जैसे सुदामा, कुछ भी नहीं था उनके पास में लेकिन भगवान के क्या बन गए, नित्य दास बन गए। तो भगवान ने उनको क्या दिया, सुदामापुरी, चिंतामणि रत्नों की बनी हुई, जैसी द्वारकापुरी थी वैसी ही सुदामापुरी भगवान ने उनको दी। एक तरफ एक व्यक्ति का ले लेते हैं और एक व्यक्ति को दे देते हैं। किसका लेते हैं, जो जबरदस्ती सीता मैया को उठा के कहता है, लक्ष्मी को उठा के कहता है ये मेरी है, जो ये कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, हे प्रभु मुझे बस अपने चरणों में रखिए, उस व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी कहती है मैं अनुग्रह करती हूँ, कृपा करती हूँ। तो लोग पूछेंगे हमारे पास तो धन नहीं आता उतना जितना जो लोग शराब पीते हैं मांस खाते हैं उनके पास तो अधिकतर धन आता है। तो उनको धन आता तो है लेकिन उनका धन जाता कहाँ है ये आपको पता नहीं है। एक व्यक्ति मिले थे बहुत बड़े हमको बिजनेसमैन, वो बोल रहे थे अरे प्रभु जी आजकल कमाई बड़ी अच्छी हो रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बताने लग गए कि अरे आपको क्या बताएं, इतने पैसे कमाते हैं, इतने पैसे कमाते हैं कि महीने का 1,00,000 रुपया तो हमारा दवाइयों पे ही खर्च हो जाता है, आपको क्या बताएं। तो बड़ी गर्व महसूस कर रहे थे, 1,00,000 रुपए की दवाई खर्च करते, सोचिए हम कितना कमाते होंगे। वो ये नहीं सोच रहे कि 1,00,000 रुपया वेस्ट हो रहा है उनका दवाइयों के अंदर। लेकिन भक्त के ऊपर अनुग्रह का कारण यही है कि उसको कम भी मिलता है ना, उस कम में वो आलिशान जीवन जीता है, आनंदपूर्ण जीवन जीता है। कई मंदिर, कई भक्त हैं ऐसे जिनकी सैलरी है 8,000 रुपए, घर में जगन्नाथ जी भी हैं और वो अड़ोसी पड़ोसी को बुलाकर जगन्नाथ जी का 56 भोग करते हैं हर महीने और सैलरी कितनी है 8,000, उसमें स्कूल के बच्चों की पढ़ाई की फीस, घर का किराया, कपड़े सब कुछ देते हैं और फिर भी सब कुछ मिलता है, बाद में सेविंग भी होती है 2,000 रुपए। सोचो 8,000 में ऐसा हो सकता है, और जो करोड़ों रुपए कमा रहे उनका 1,00,000 रुपया दवाइयों में खर्च हो जाता है, हॉस्पिटल्स में चला जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे पैसा लुटा देते हैं, अमेरिका लंदन में जाकर शादियां कर लेते हैं, सारा पैसा लेके भाग जाते हैं उनका। एक व्यक्ति अभी मिले थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो जनरल मैनेजर से रिटायर हुए हैं, कह रहे थे हमारे बैंक में हर साल कई अकाउंट डेड अकाउंट होते हैं, उनके मांगने वाला कोई होता ही नहीं है, कितना पैसा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। फिर वो कहते हैं हम उसे रख लेते हैं, पूरा जीवन रात दिन मेहनत करके जो करोड़ों की प्रॉपर्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाई, वो बाद में उसका कोई मांगने वाला ही नहीं है, डेड अकाउंट, 15 से 20 अकाउंट हर साल क्लोज होते हैं, उनमें करोड़ रुपया पड़ा लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। सोचिए, तो कृष्णदास बनेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो मान लीजिए अगर शरीर छूटता है तो अपने साथ भगवान का नाम लेके जाएंगे, और अगर पैसा कमाते रहे तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डेड अकाउंट हो जाती है, एक भी रुपया लेकर भगवत धाम, मतलब अपना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा लेके नहीं जा रही है। तो इसलिए बेहतर क्या है, आज भगवान के नाम भजन को पकड़ लें। फिर आगे कहते हैं इसके अंदर
पुनः यदि कृपा करी एही जनेर केश धरी तानिया तुलह ब्रज धामे तब से देखिया भाल नातु बापराण गेल कहे दीन दास नरोत्तम।
श्री नरोत्तम दास ठाकुर दीनता वश कहते हैं, पुनः एक बार आप मेरे बालों को पकड़कर इस भव कूप से बाहर स्थित करें तभी मैं बच सकता हूँ, अन्यथा मेरे प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे।
फंस गया हूँ गृहस्थ आश्रम में। पत्नी कहती है सुनते नहीं जी, बच्चे कहते हैं सुनते नहीं जी, पूरा जीवन निकलता जा रहा है। जिन रिश्तेदारों के लिए पूरा जीवन निकालते हैं एंड में वही कहते हैं जी आपने हमारे लिए किया ही क्या। लेकिन भगवान ऐसे हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे तुमने मेरे लिए किया क्या। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे लिए थोड़े से भी थोड़ा करेंगे ना तो मैं उसके लिए बहुत से बहुत करूंगा, थोड़े से थोड़े का बहुत से बहुत रिजल्ट। ये भगवान की कृपा है आप देखिए। तो इसलिए नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि एक बार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, फंस गया हूं इस भवकूप में, निकाल दीजिए प्लीज इसमें से, मुझे कृपा करिए मुझ पर, यहां से निकाल दीजिए। और कहां ले जाइए निकाल के? अपने चरण के आश्रय में, अपने नाम के आश्रय में, ताकि मैं आनंद विभोर होकर आपका नाम भजन कर सकूं। क्या बोल सकूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो भगवान की सेवा जो भगवान का नाम भजन है इसे ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि जब भी कर रहे हैं और साथ में गप भी कर रहे हैं। गप और जप दोनों अलग अलग। जप करें जब आपकी 16 माला, तो ध्यान पूर्वक उस समय सिर्फ जप ही करें। जब भगवान के आरती करें तो उस समय सिर्फ आरती ही करें। जब भगवान के शास्त्र पढ़ें तो उस समय सिर्फ शास्त्र ही पढ़ें। इससे क्या होता है, भगवान आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। आपके घर में कोई मिलने के लिए आए, हाँ जी घंटी बजाए, बड़े दिन से आप उसे बुला रहे थे कब आओगे, जब वो आ गए तो आप फोन पे बात करें, आ गए बैठो, हाँ दुकान खुली है, अच्छा बेटा काम कर, हाँ बैठो ना आप, चाय लेंगे, अच्छा आते हैं अभी, हाँ बेटा बात सुनो। अब वो व्यक्ति इग्नोर हो रहा है, थोड़ी देर में वो चले जाएंगे, कहेंगे ये तो सुनते ही नहीं, हमें बुलाया था और फिर अभी अपने ही बिजी हैं। ऐसे ही हम भी करते हैं, हे ठाकुर जी, हे कृष्णा, कब आओगे, दर्शन दे दो, मुश्किलें शांत कर दो, आनंद दे दो। और जब भगवान आते हैं अपने नाम के रूप में, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में जब भगवान आते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे, हाँ बोलो बोलो, थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, हरे कृष्णा, अरे गाड़ी वहां खड़ी है वहां लगा दो ना, हरे अरे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहा है मुझको पूरा का पूरा। तो फिर भगवान वहां से चले जाएंगे और कह रहे हैं, और इसको कभी भी जीवन में भगवान मिलेंगे ही नहीं। ऐसे ही एक कथा आती है सुंदर, राजा जयसिंह। हाँ, आप में से कितने लोगों ने राजा जयसिंह के बारे में सुना है, जयपुर के राजा जयसिंह। हाँ, जयसिंह, यस जयसिंह जो थे राजा, उनके एक सुंदर विग्रह थे, उनका नाम था राधा रमन। राधा रमन मतलब राधा रानी को जो आनंद प्रदान करते हैं वो कृष्णा को कहते हैं राधा रमन। तो जहां मंदिर होता है राधा रमन का उसे कहा जाता है राधा राधिका रमन। हमारे पंजाबी भाग में है, उसका मंदिर का नाम ही है राधा राधिका रमन। राधा रानी को आनंद प्रदान करने वाले भगवान को कहते हैं राधा रमन। तो जयसिंह जी अपने राधा रमन विग्रहों की रोज सेवा करते थे और नियमित रूप से उनका टाइम था 8 to 9, 8 to 9 फिक्स। अभी उनको तस से मस नहीं कर सकते उनके सेवाओं के अंदर, नो ही विल नॉट मूव। कुछ भी कर लीजिए, आ जाइए राजा जयसिंह, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, नो नथिंग, 8 to 9 मैं और मेरे भगवान। ऐसे ये है नाम भजन में, ऐसे ही करना चाहिए। अगर जब करने का टाइम है उस समय मैं और मेरे भगवान, बाकी सब शैतान, सबको दूर हटा देना चाहिए, सिर्फ भगवान के साथ में रहना चाहिए। ऐसा जब भजन करेंगे तब देखिए भगवान क्या करते हैं। राधा रमन की सेवा करने वाले जयसिंह के बहुत सारे मुगल मुसलमान लोग दुश्मन बन गए। औरंगजेब का समय था, औरंगजेब ने वृंदावन में जितने भी विग्रह थे उन सभी विग्रहों को नष्ट करना शुरू कर दिया, एक एक करके। और इसी कारण राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन और राधा गोपीनाथ और अनेकों विग्रहों को वहां से ले जाया गया, कहां, जयपुर। जयपुर के जो ये लोग थे, मराठा लोग थे, ये क्या बोलते हैं इनको,
राजपूत लोग जो थे, राजपूत लोग बड़े स्ट्रांग थे, तो उसमें जयसिंह बड़े ताकतवर थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे मुसलमानों के आगे, सारे विग्रह आप ले आइए राजस्थान में, हम उनको अपने पास सेफ करके रखेंगे। बड़े समझदार थे। तो औरंगजेब जब आया तो उनको क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, उन्होंने कहा औरंगजेब से, वाह क्या आदमी हुआ। तो औरंगजेब बोला, सब लोग तो मुझसे लड़ रहे थे, ये बोल रहा क्या आदमी हुआ, मतलब क्या लड़ाई करते हैं आप। अच्छा, बड़ा खुश हो गया, अरे हम तो आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अरे खुश हो गया, मुझसे ट्रेनिंग, अरे आपके जैसा तो कोई योद्धा ही नहीं हुआ। ओ, इतना फूल गया अपने अहंकार में, कहा ये लोग तो मेरे कौन है, प्रिय बंधु हैं, इसलिए राजपूत लोगों को छोड़कर बाकी सबको नष्ट कर दो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। तो राजपूत लोग थे वो बच गए, और फिर उन्होंने सारे विग्रहों की रक्षा करी। तो उसमें राधा गोविंद देव जी अभी सिटी पैलेस जयपुर में है, राधा मदन मोहन करौली राजस्थान में है, राधा गोपीनाथ जयपुर में भी एक छोटा बाजार है वहां पे है, श्रीनाथ जी जो है आपके नाथद्वारा में है। तो इस तरह से सारे विग्रह वृंदावन से जा रहे थे। तो इस तरह से जो राधा रमन विग्रह है, ये उनके पर्सनल डिटेल्स थे जयसिंह के, और जयसिंह इसकी पूजा कर रहे थे। और इतने में खबर मिली कि कुछ मुगल सेना और मंगोलियंस, उन्होंने सोचा मिलकर कि हमें पता चला है कि राजा जयसिंह भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, 8 से 9 के बीच में ये अपना भजन करता है, उस समय ये हिलता भी नहीं है। अगर ये अपनी सेना का लीडरशिप ना करे, नेतृत्व ना करे, तो इनकी सेना को ध्वस्त किया जा सकता है। बस पॉइंट मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, टाइम निकाला, 7:45 झाड़ियों में छुप गए, और भाले लेकर, तलवारें लेकर और बारूद लेकर, जो भी था उनका असला वो लेकर सारी सेना छुप गई। और फिर जैसे ही 8 बजे घंटा बोला, टंग टंग टंग, ऐसे 8 बार बजता था, 8 बज गए सुबह के 8 बजे, हल्ला बोल, सारे निकल पड़े, तलवार ले गए, ओ सेना पे लड़ाई चालू कर दी। और जयसिंह के जो सेनापति था, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वो दौड़ा दौड़ा आया, राजा जयसिंह 8:05 हो गए हैं, अभी आपने पूजा शुरू भी नहीं करी है, हमारे महल पर चढ़ाई हो गई, मुगल और मंगोलियंस ने मिलकर चढ़ाई कर दी है। राजा जयसिंह बोले, जय श्री राधा रमन, जय श्री राधा रमन, जय श्री राधा। अरे राधा रमन क्या करेंगे, जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, चलो 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 चलो, जय श्री राधा रमन, जय श्री राधा रमन, जय श्री राधा रमन, वो पूजा कर रहे थे। अभी सेनापति बोला, आज तो हमारा राजपूताना सब कुछ छिन जाएगा। दौड़ कर गए उनकी माँ के पास, और जयसिंह की माता जी को बोला, आप राजमाता हैं, राजमाता कुछ करिए, जब पुत्र विफल हो जाए अपनी अपने प्रयासों में, तो फिर माता का कर्तव्य है कि उसको प्रेरणा दे, आप उसे प्रेरणा दीजिए, बोलिए, ये पूजा पाठ धरा का धरा रह जाएगा, बाद में कर लेना, टाइम थोड़ी निकल गया, जब जीत जाएंगे फिर 4 घंटे पूजा करना, लेकिन अभी लड़ाई करना हमारे क्षत्रियों का धर्म है। हो गई माँ, बेटा बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तुम जाओ और क्या करो, रण क्षेत्र पे उतरो, तुम राजपूत हो, राजपूत का कर्तव्य है लड़ाई करना, अपनी सेना की नेतृत्व करना, सुरक्षा प्रदान करना, जाओ। तो बोला, हरे कृष्ण, जय श्री राधा रमन, जय श्री राधा रमन, जय श्री, अपनी पूजा करते रहे, उनको स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूरा बिजी है। अभी क्या हुआ, जब माँ भी नाराज हो गई ना, उसने गेट बंद किया, सुनता ही नहीं है तो, जाने दो इसको। तो प्रधानमंत्री को बोला कि तुम मेरे पुत्र से कम नहीं हो, तुम जाओ सेना का नेतृत्व करो, तुम लड़ाई करो, रक्षा करो। तो सब निकल पड़े, लेकिन धाड़ 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 सेना कट रही थी, एक इधर मर रहे, कुछ इधर मर रहे। इतने में देखा कि उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था जयसिंह के पास, जो हाथी के जैसा ताकतवर था, मतलब मोटा था भी हाथी जैसा, और उस घोड़े के ऊपर उसको लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते थे राजा जयसिंह। थोड़ी देर में क्या देखा, अस्तबल में से एक विशाल हाथी जैसा घोड़ा निकल कर आ रहा है, जो राजा जयसिंह का था, और उसके ऊपर कौन बैठे हुए हैं, राजा जयसिंह बैठे हुए हैं। राजा जयसिंह के हाथ में एक भाला है और एक तलवार है, और वो घोड़ा चल रहा है स्पीड से, और वो जैसे ही रण क्षेत्र में पहुंचे, उन्होंने चिल्लाया, हरी बोल, काटना शुरू कर दिया, ये काटा, वो मारा, ये मार, वो काट, सब मचा दी, और सारे लोग गिरने लग गए। और तुरंत ही कुछ समय के अंदर ही मुगल सेना ने क्या बोला, वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, हम तो हार गए। और वापस सेना का झंडा, राजपूताना झंडा चढ़ाया गया किले के ऊपर, राजा जयसिंह की क्या हो गई, फतेह हो गई, जीत गए। और फिर प्रधानमंत्री दौड़ा दौड़ा आया राजमाता के पास। राजमाता राजमाता हमारी विजय हो गई, जयसिंह ने आपकी बात मान ली, जयसिंह ने लड़ाई करी। राजमाता बोली, अच्छा मेरे पुत्र ने मेरी बात मान ली, बहुत अच्छा है, चलो मैं उससे मिलके आती हूँ। तो मिलने आई तो उनका जो डोर था वो बंद था, उसे खोला तो वहां जयसिंह बैठे हुए थे। बोली, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा तुमने लड़ाई करी मेरी बात मानकर, अब पूजा करो 4 घंटे 6 घंटे रात दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बोला, मैं तो पूजा ही कर रहा था, मैं गए कहां? तो बोले, तुमने मेरी बात नहीं मानी। कह रहे, नहीं मैंने आपकी बात क्यों मानी, माँ बाप से बढ़कर भी भगवान है, माँ बाप का सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है, लेकिन उनसे भी बढ़कर भगवान है, परम पिता। एक है पिता, एक है परम पिता। तो परम पिता कृष्ण की सेवा में करता रहा, माता मुझे क्षमा करिए लेकिन मेरा नियम है 8 से 9 राधा रमन। तो फिर क्या हुआ, माता जी ने कहा, अच्छा तुम अगर यहां थे तो वहां कौन था? तो बोले, पता नहीं, मुझे क्या पता कौन था वहां पर। तो इतने में वो अभी वस्त्र पहनाने के बाद मुकुट और कुंडल और ब्रासलेट्स भगवान को पहनाते थे कड़े, तो उन्होंने कुंडल 2 पीस उठाए, तो जैसे उनको चढ़ाने लगे तो देखा जो कल के कुंडल थे भगवान के, वो एक कुंडल गायब है और एक कुंडल यहां पर है। तो एक कुंडल कहां चला गया? तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया, सेना जाए भाड़ में, किला जाए भाड़ में, मेरे राधा रमन के विग्रह के जो ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, गहने हैं, इसका एक भी तिनका मिस नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, किसने चोरी किया? तो सब जगह ढूंढने गए, ढूंढे तो पता चला कि रण क्षेत्र में ही उनका कुंडल गिरा हुआ मिला। वो वापस लेके आए तो राजा जयसिंह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, सेनापति ने, प्रधानमंत्री ने, कि राजा आप कैसे दो हो सकते हैं, उधर आप पूजा कर रहे थे और इधर आप लड़ाई भी कर रहे थे। और लड़ाई कर रहे थे? बोले, मैं तो लड़ने गए ही नहीं, किसने लड़ाई की? देखिए, आपका घोड़ा आप ही चला सकते हैं, उसको साधना और किसी के बस की बात नहीं, हाथी के बराबर ताकतवर घोड़ा। तो देखा घोड़ा हांफ रहा था, हांफ रहा था। उन्होंने कहा, हाँ ये तो हांफ रहा है, इसको किसी ने इस्तेमाल किया है जो कि मेरे बराबर ताकतवर है। तो फिर पता चला कि क्या हुआ, राजा जयसिंह किसकी सेवा कर रहे थे? राधा रमन की। और राधा रमन किसकी सेवा कर रहे थे? जयसिंह की। तू मेरे नाम में, बोलिए, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। अगर हम चाहते हैं भगवान हमारी रक्षा करे, बोलते हैं ना, भगवान मुझे ये दे, मेरी मदद कर, मेरा ये कर, मेरा, उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। बैंक में पैसे जमा करते हैं तब फिर उसके बाद में FD इशू होती है, मैच्योरिटी होती है। कुछ जमा करते हैं तो अकाउंट में बैलेंस आता है, जमा कुछ नहीं करेंगे तो वापस कुछ नहीं आएगा। इसलिए आज ही मौका है, भगवान के नामों की शरण ग्रहण करें और जोर जोर से क्या बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम तो हिंदू हो और तुम हमेशा कहते हो तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, मैंने तो आज तक तुम्हारे भगवान को कभी देखा नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम क्या मुझे भगवान दिखा सकते हो? तो अकबर ने, बीरबल ने जब सोचा, हाँ दिखा सकता हूँ। कह रहे, अच्छा और तुम्हारे भगवान करते क्या है? कुछ काम तो करते होंगे, खाली बैठे रहते हैं ऊपर, बांसुरी बजाते हैं, कुछ काम भी करते हैं? उसने कहा, हमारे भगवान बहुत काम करते हैं, पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, सब कुछ भगवान ही तो करते हैं। कहा, अच्छा लेकिन प्रूफ क्या है इसका, व्हाट इज द प्रूफ? आजकल लोग लॉजिक मांगते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो बीरबल ने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अकबर ने कहा, देखो अगर तुम मुझे अपने भगवान के दर्शन नहीं करा पाए तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, इसलिए जाओ और भगवान का दर्शन कराने का उपाय सोचो। अब बीरबल गया, बड़ा टेंशन में था, तो उसके पुत्र ने कहा, पिताजी आप बड़े परेशान लग रहे हैं। कह रहे, हाँ अकबर राजा ने कहा है मुझे भगवान के दर्शन कराओ, और ये भी कहा है कि भगवान कैसे मिलता है, और फिर ये भी कहा है कि भगवान करता क्या है, इन 3 प्रश्नों के उत्तर दो नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा धड़ से। अब बड़ा टेंशन में आ गया। तो बीरबल के बेटे ने कहा, अरे पिताजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब तो आपने हमें सिखाई रखा है, आप मुझे ले चलिए, आप अपने आराम से भजन करिए, चैंटिंग करिए, मैं उत्तर दे दूंगा। अच्छा चलो, फिर दूसरे दिन पहुंच गए। अब राजा अकबर बैठे थे गद्दी पे, आओ बीरबल ले आए उत्तर, कहाँ है भगवान? तो मैं नहीं दे सकता इसका उत्तर, राजा मेरा पुत्र दे देगा।
अच्छा, मतलब बाप बेटा दोनों मरना चाहते हैं।
तो उसने कहा, बताओ कहाँ है भगवान?
तो उसने कहा, राजा प्रश्न के उत्तर के लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ।
हाँ ठीक है, मांगो।
मुझे एक ताजा दूध का घड़ा चाहिए।
ताजा दूध का घड़ा चाहिए।
तो कहा, ताजा दूध का घड़ा पेश किया जाए। घड़ा आ गया, दूध का घड़ा। कह रहे, राजा बताइए इसमें मक्खन दिखाई देता है?
तो राजा सोचने लगा, हाँ मक्खन तो नहीं दिखता।
कह रहे, दिख नहीं दिखता, इसका मतलब मक्खन नहीं है।
कह रहा, नहीं मक्खन तो है।
तो इसका मतलब भगवान दिखाई नहीं देता, इसका मतलब नहीं है?
कह रहा, नहीं है।
चलो ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया, भगवान है। दिखता कैसे है? कह रहे, अच्छा अगर आपको इस घड़े में से, दूध में से मक्खन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा?
कह रहे, एक मथनी लानी पड़ेगी, फिर ऐसे 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 मथना पड़ेगा और फिर उसमें से क्या निकलेगा? मक्खन निकलेगा।
ऐसे ही भगवान है, इतो नरसिंगा पर तो नरसिंगा, यतो यतो यामी ततो नरसिंगा। जहां जहां जाएंगे वहां भगवान नरसिंह है, विराजमान है विष्णु कृष्ण, पर दिखते क्यों नहीं है? प्रोसेस प्रॉपर नहीं है। प्रोसेस क्या है? एक जप माला डालनी पड़ेगी, उसको घुमाना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। फिर क्या होगा? दूध में से क्या निकलेगा?
मक्खन।
ऐसे ही सृष्टि में से कौन प्रकट हो जाएंगे?
रुक्मणी द्वारकाधीश जगन्नाथ
निकल आएंगे, दिखने लग जाएंगे हमको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्रोसेस हम दृढ़ता से पालन नहीं करते। कई बार मक्खन नहीं निकलता दूध में से, ऐसे बच्चे चम्मच घुमाते रहेंगे तो दूध थोड़ी मक्खन निकलेगा। उसके लिए प्रॉपर तरीके से पूरा जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, पूरा लगाना पड़ेगा जोर, तो फिर मक्खन निकलेगा।
तो अकबर बोला, हाँ ये बात तो ठीक कही।
अच्छा लेकिन तुम्हारे भगवान करते क्या है ये बताओ? तो कह रहे, राजा इसके लिए ना आपको गद्दी से उठना पड़ेगा और यहां आना पड़ेगा जहां मैं खड़ा हूं।
कह रहे, अच्छा फिर उत्तर मिल जाएगा? कह रहे, हाँ मिल जाएगा।
तो खड़ा हुआ, फिर राजा नीचे आया, कहा, और अब मुझे अपने स्थान पर बिठाकर मुझे मुकुट आपका पहनाना पड़ेगा।
कह रहा, ये क्या है?
कह रहा, देखिए उत्तर चाहिए तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है। फिर उठाया बच्चे को, बिठाया, मुकुट उतारकर बच्चे के सर पर रख दिया। कह रहे, अब बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या है?
कह रहे, मेरे भगवान यही तो करते हैं।
कह रहे, मतलब? कह रहे, पल भर में राजा को रोडपति बना देते हैं और रोड पे खड़े व्यक्ति को राजा बना देते हैं। तो ये भगवान की शक्ति है अपार, ज्योतिष विद्या कुछ नहीं कर सकती। ज्योतिष विद्या में लोग सोचते हैं ना, राहु केतु शनि बृहस्पति शुक्र ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है ज्योतिष विद्या। हाँ ज्योतिष गलत नहीं है, शास्त्र सही है। शास्त्र से आप ये पता कर सकते हो कि क्या होने वाला है, लेकिन बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है। कोई ये बोले, आप ना गोमेद पहन लो जी, पुखराज पहन लो, आपके दिन बदल जाएंगे। अरे दिन तो बदलने की शक्ति कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं है। कभी दिन नहीं बदलेंगे, उसके दिन बदल जाते हैं। पहले 1000 रुपए होते हैं, अब उसके पास चले जाते हैं, तो ये दिन बदलते हैं उसके। बस ज्योतिष वाला ले लेता है, 1000 रुपए छीन लेता है। तो लोग फंसे पड़े हैं संसार में, ये कर दो वो कर दो, अपने शारीरिक स्तर के ऊपर ही बहुत तरह के प्रयास कर रहे हैं और फिर इसीलिए चीटिंग हो रही है उनके साथ, छले जा रहे हैं बार बार। तो आज जो जयदेव गोस्वामी है उनका तिरोभाव है। जयदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान, उनसे तकरीबन 300 साल पहले बांग्लादेश बंगाल में आते हैं और उनके जो स्थान था, जो गांव था, उसको बोलते हैं केंदु बिल्व। क्या बोलते हैं? सब लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग सो रहे हैं। केंदु बिल्व। क्या बोलते हैं? बिल्व। और जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बीरभूम। क्या नाम है? बीरभूम। बीरभूम ये बंगाल के अंदर आता है और वो एक शिव जी का मंदिर था जिसको बोलते हैं कुशेश्वर मंदिर। उस मंदिर के अंदर जयदेव गोस्वामी रहकर भजन किया करते थे और बचपन से ही बहुत ही विलक्षण संत थे। भगवान से बहुत ज्यादा उनका प्रेम था, सदा भगवान के नाम भजन में रत रहते थे। तो एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन राजा थे और उनके एक चीफ सेक्रेटरी थे, उनका नाम था गोवर्धन आचार्य। गोवर्धन आचार्य लक्ष्मण सेन के राज्य में चीफ सेक्रेटरी थे। तो एक बार गोवर्धन आचार्य ने इनको देखा कि ये एक भगवान के भजन की रचना कर रहे हैं। उस भजन का नाम है 10 अवतार स्रोत। 10 अवतार स्रोत सुना है आपने किसी ने? 10 अवतार स्रोत
किसने सुना है? हैंड रेज। एक, दो, तीन, दस अवतार स्रोत। दस अवतार स्रोत है जयदेव गोस्वामी का रचित, बहुत सुंदर। हमारे मंदिर में उस स्रोत का एक हिस्सा नियमित रूप से दो बार गाया जाता है। कौन सा है? नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दाहियने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शिलाटंका नखालाये इतो न सिंघा पर तो न सिंघा इतो न सिंघा पर तो न सिंघा यतो यतो यामि ततो न सिंघा यतो यतो यामि ततो न सिंघा बाहि न सिंघा हृदये न सिंघा बाहि न सिंघा हृदये न सिंघा नरसिंघा मदिं शरणं प्रपते नरसिंह गामदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नकाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम केशवद्रीताया नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो ये एक हिस्सा है। इस तरह से उन्होंने भगवान के दस अवतारों के बारे में वर्णन किया। प्रथम स्तर में वो कहते हैं केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। दूसरे अवतार पे वो कहते हैं केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से दस अवतारों का वर्णन। प्रथम मीन शरीरा, द्वितीय अवतार भगवान का कुर्म शरीरा, तीसरा अवतार भगवान का नरसिंह रूपा, चौथा अवतार भगवान का वरा रूपा वरा, और पांचवा भगवान का वामन रूपा, छठा भगवान का परशुराम परशुराम रूप भगवान का, और फिर छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां केशव धृता बुद्ध शरीरा, गौतम बुद्ध के रूप में भगवान आते हैं बुद्ध शरीरा, और फिर दसवां है केशव धृता कल्कि शरीरा, कल्कि शरीर में आएंगे भगवान। तो उन्होंने कहा नौ अवतार हो चुके हैं और दस अवतार होगा। तो इतना सुंदर ये भजन वो गोविंद जब गोवर्धन आचार्य ने सुना तो उन्होंने कहा आपको तो लक्ष्मण सेन राजा के राज्य में क्या होना चाहिए, रॉयल पोएट होना चाहिए, राज्य कवि होना चाहिए, चलो राज्य कवि बनाएंगे तुमको, धन दौलत में तोल देंगे, चलो चलो। तो ये बेचारे तानपुरा लेकर अपने गाने वाले, इनको कहाँ आनंद आएगा। इन्होंने तो कहा कि आने जाने में जितना समय खर्च होगा ना, राज्य तो जाऊंगा, फिर राजा मुझे कहेगा लक्ष्मण सेन आ गए चलो कुछ सुनाओ, फिर सुनाने के बाद वो माला तोड़ेगा फेंकेगा, ये लो तुम्हें अशर्फियों में तोल दिया गया, फिर मैं कहूंगा राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर वो राजा कहेगा ठीक है जाओ, फिर मैं आऊंगा, आने जाने में वहां व्यर्थ मेरा समय जाएगा, उतनी देर में तो मैं पता नहीं कितनी बार इस भजन को दोहरा लूंगा, और हम अपना जब छोड़कर पता नहीं कहां कहां घूमने चले जाते हैं। अच्छा आगरा चलना है चलो, वृंदावन जाना है चलो, कहीं भी चले जाते हैं, भजन हो जाएगा बाद में। प्रभु जी अभी जल्दी जल्दी क्या करना है, अभी तो बहुत दिनों जीना है। हा? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करना प्रभु जी, अभी तो जीना बरसो, बहुत दिन जीना है प्रभु जी, इतनी जल्दी जल्दी करके क्या होगा। हा? अभी तो अच्छा है कि हम क्या करें, अपना भजन बाद में करें, अभी तो आज एंजॉय कर ले अपने जीवन, लेट अस एंजॉय एंजॉय एंजॉय, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, मजा लेते लेते और मजा बन जाती पूरी जिंदगी, आम का रस निकाल देता है संसार, और एकदम जीन हीन होकर इस संसार को छोड़कर हमें जाना पड़ता है, कुछ नहीं होता हमारे पास। तो इस प्रकार से जो जयदेव गोस्वामी थे उन्होंने उनके पास राधा माधव विग्रह थे, राधा माधव की सेवा करते थे और उनका रात दिन भजन किया करते थे। तो एक दिन बहुत ही सुंदर घटना हुई, उन्होंने एक गीत लिखा था जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। आप लोगों ने अपने स्कूल सिलेबस में पढ़ा होगा गीत गोविंद। गीत गोविंद के अंदर गोपियों के साथ विरह जो है भगवान का, सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, उसके बारे में वर्णन हुआ है। और बहुत सुंदर तरीके से गोपी गीत लिखा गया। गोपी गीत जब वो लिख रहे थे तो उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था पद्मावती। तो पद्मावती कैसे उनके जीवन में आती है ये भी एक बहुत सुंदर लीला है। एक ब्राह्मण थे, उनके घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। तो पुत्र पुत्री ना होने के कारण उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करी, जिनकी कल रथ यात्रा है हमारे मंदिर में। हे जगन्नाथ, आप तो जगत के नाथ हैं, जगत के ईश्वर हैं, हमारे घर में ना पुत्र है ना पुत्री, कृपा करिए एक पुत्र पुत्री प्रदान करिए। तो जगन्नाथ की कृपा से उनके घर में एक पुत्री हुई। वो पुत्री हुई, जब वो बड़ी हो गई तो अभी माँ बाप की टेंशन क्या, शादी कैसे हो, कहाँ हो, अच्छा वर मिले, सुवर मिले, सुवर नहीं मिले, सुवर मिले, लोग सोचते हैं सुवर मिले, सुवर नहीं, सुवर मिले। तो सुवर मिलने के लिए सुकन्या को सुवर मिलना चाहिए। तो सुवर के लिए हाँ वो भगवान जगन्नाथ से बोलते हैं, हे जगन्नाथ, आपने पुत्री दी, इसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अब इसका विवाह करवाइए। तो विवाह कराने के लिए जगन्नाथ ने कहा, तुम जाओ जगन्नाथपुरी, वहां मेरा एक भक्त है जिसका नाम क्या है, जयदेव गोस्वामी, और वो ब्रह्मचारी है, सिर्फ रात दिन भजन में मग्न रहता है, तुम उसके पास जाओ और वो तुम्हारी लड़की से विवाह करेगा। तो ब्राह्मण जाते हैं और जयदेव गोस्वामी को कहते हैं, हे गोस्वामी, मेरी पुत्री पद्मावती आपसे विवाह करना चाहती है, क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ की इच्छा है। तो उन्होंने कहा, अगर जगन्नाथ की इच्छा है तो उसके लिए तो मैं नरक में जाने को तैयार हूं, तो विवाह करना नरक से थोड़ा सा बेटर है, ज्यादा बेटर नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेटर है, तो मैं विवाह कर लेता हूं। तो उन्होंने विवाह कर लिया और रहने लगे पद्मावती के साथ। अभी पद्मावती रात दिन बस एक ही काम करती थी, अपने अपने पति की सेवा करना, और कोई काम नहीं था, बस वो लिखते थे और ये उनके लिए प्रसाद बनाती थी, राधा माधव को भोग लगाती थी और खाते थे। एक दिन बहुत ही विचित्र लीला हुए कि जो ये जयदेव गोस्वामी थे ये बैठकर गोपी गीत लिख रहे थे सुंदर तरीके से, और गोपी गीत लिखते लिखते इनके मन में एक भाव आया। इन्होंने कहा कि राधा रानी के चरणों में कृष्ण प्रणाम करते हैं, मतलब कृष्ण जो है वो राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सोच तो लिया, अब लिखने से पहले, तमाल पत्र पर लिखने से पहले सोचने लगे, क्या कभी कृष्ण राधा रानी के चरणों में अपना सर लगा सकते हैं? अगर मैंने आज ये लिख दिया तो कल आने वाले लोग सोचेंगे राधा रानी इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जबकि है कौन, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इस लीला को समझ नहीं पाएंगे। तो कंफ्यूज होकर चले गए। चले गए कहां, उनके घर के पास में गंगा नदी थी, और गंगा नदी में स्नान करने चले गए और अपनी पत्नी को बोले, पद्मावती मैं कुछ देर बाद आऊंगा, तुम भोग लगाना राधा माधव को और महाप्रसाद रखना, मैं स्नान करने जा रहा हूं, स्नान करके लौटूंगा, प्रसाद ग्रहण करूंगा और फिर अपने गोपी गीत को पूर्ण करूंगा। और अपने तमाल पत्र उठाया, ऊपर रख दिया, शाही दवात उठाकर जो भी है ऊपर रख दिया और स्नान करने चले गए। कुछ ही देर बाद वापिस आए, कहा, पद्मावती ले आओ मेरा प्रसाद। पद्मावती प्रसाद ले, प्रसाद खाया और उसके बाद में गोपी गीत वाले तमाल पत्रों को खोला और उसमें लिखा, देही पद पल्लवम उद्धारम, देही पद पल्लवम उद्धारम, राधा रानी के चरणों में कृष्णा सिर रखते हैं। लिख दिया, कह रहे लिख देते हैं, लिख दिया, शाही लगाए, वापस तमाल पत्र बंद किए, ऊपर रखे, बोले, पद्मावती मैं किसी से मिलने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, ठीक है स्वामी, अब चले गए। कुछ ही देर बाद बस ये निकले थे, वो फिर दोबारा से अंदर आए, अंदर आए और बोले, जयदेव गोसाई, पद्मावती बहुत भूख लगी है, प्रसाद ले आओ। अरे स्वामी, अभी तो खाके गए थे, फिर आ गए प्रसाद खाने के लिए, अभी तो गए आप तुरंत ही प्रसाद खाके, तुम्हें क्या हो गया है आज? मैं तो गया ही नहीं हूं, अभी तो मैं गया स्नान करके लौटा हूं, देखो मेरे वस्त्र भी गीले हैं, जल्दी लाओ मेरे लिए वस्त्र और मेरे लिए प्रसाद, फिर मुझे आगे गोपी गीत भी लिखना है। अरे स्वामी क्या हो गया आज आपको, क्या हो गया, इतना चिंतन कर रहे हैं, किस विषय का चिंतन कर रहे हैं कि आप भूल ही गए, आप अभी अभी तो आए थे। मैं आया था। तो वो समझ गए कुछ तो कंफ्यूजन है, वो सीधा दौड़े, अपना तमाल पत्र उठाया, खोला, देखा उसमें जो सोच रहे थे वो लिखा हुआ है, क्या, देहि पद पल्लवम उद्धारम, उसमें लिख दिया। सोच में पड़ गए और सोचते सोचते आंखों से आंसू निकलने लगे
और पद्मावती के चरणों में गिर गए और पद्मावती के चरणों में गिर के बोलने लगे, पद्मावती तुम सबसे भाग्यशाली हो इस संसार में। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं तुमको दर्शन देने आए, कृष्ण को स्वयं तुमने अपने हाथों से खाना खिलाया। हम तो ऑल्टर में भोग लगाते हैं, पता नहीं भगवान खाते भी हैं कि नहीं खाते, लेकिन तुम्हारे हाथ से तो साक्षात खा के गए। पद्मावती अपने हाथों को मेरे सिर पे रख दो। तो उनके हाथ उन्होंने पद्मावती ने जयदेव गोस्वामी के सिर पे रखे। वो बोले नहीं नहीं स्वामी ये मत करिए मत करिए, रख लिए। उनके पांव को पकड़ने लगे, स्वामी क्या कर रहे हैं, दे दो मुझे अपने चरण। तुम महान हो गई हो, तुम महान हो गई हो पद्मावती। और उन्होंने उसके अगले श्लोक में जब गोपी गीत के इसके बाद एक तो कृष्ण ने लिखा और दूसरा उन्होंने लिखा और उसमें कहते हैं, जयते पद्मावती सुखा समाजे। उन्होंने लिखा ऐसी पद्मावती की जय हो जिसने अपनी पति की सेवा कर कर क्या प्राप्त कर लिया, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। हरि बोल। हाँ, तो ऐसे जयदेव गोस्वामी हैं। आप देखिए जिसकी कृष्ण भक्ति में निष्ठा है, कृष्ण आते हैं उसके जीवन में, चाहे वो राजा जयसिंह हो चाहे वो जयदेव गोस्वामी हो। जयदेव गोस्वामी रोज गंगा नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन वो बीमार पड़ गए और बीमार इतना पड़ गए कि अभी स्नान करने जा नहीं सकते। तो सोचने लगे कि क्या करूं मैं, स्नान करने कैसे जाऊं। सोच ही रहे थे थोड़ी देर में कुटिया के बाहर आवाज आने लगी, खल 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 खल। देखा तो गंगा जो है उतनी दूर से चलकर गंगा नदी चढ़ गई ऊपर उनके घर तक, फ्लड आ गया उसमें और उनके घर तक आ गई गंगा नदी। गंगा नदी ने ये दिखाया दर्शाया कि जयदेव गोस्वामी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं कि अगर वो मुझ में स्नान करने नहीं आते तो मैं स्वयं उनके पास चले जाती हूँ उनके प्रक्षालन करने, उनको स्नान कराने के लिए। देखिए ये भगवान के भक्तों की असीम महिमा। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए, इस ऐसा उसी के साथ होता है जिसकी नाम भजन में क्या है, निष्ठा है। ऐसे नहीं एक दिन माला कर ली दूसरे दिन भूल गए। आज प्रभु जी कितनी करी, आज 6 करी प्रभु जी, आज कितनी करी प्रभु जी, आज तो टाइम नहीं मिला 4 ही करी आज तो हमने, आज तो 2 ही करी प्रभु जी। हमारा कोई नियम ही नहीं, जिसका नियम नहीं है उसके साथ भगवान कभी नहीं है। नियम ऐसा होना चाहिए कि जान जाए पर माला ना जाए हमारे हाथ से, भगवान का नाम हमारे मुख से ना जाए। ऐसी दृढ़ता जिसकी है मंदिर में सेवा करने का, भगवान के नाम का, भगवान के शास्त्र पढ़ने का, वो व्यक्ति के जीवन में भगवान एज इट इज साक्षात चलते हैं। प्रभुपाद जी उन 70 साल की उम्र में प्रभुपाद इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, 2 बार हार्ट अटैक आ रहा है उनको और उन दोनों हार्ट अटैक के बाद भी वो बोस्टन हार्बर में पहुंच जाते हैं। कोई 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हो उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाए ना, वो मंदिर नहीं आएगा द्वारका से, सेक्टर 14 के घर से अपने, कहेगा जी आजकल आ नहीं पा रहे, क्या वो बुखार हो गया है, आ नहीं पाते। बड़े दिन से देखा नहीं माता जी, आप प्रभु जी हमारी कमर में दर्द है, यहाँ हार्ट अटैक आया तो बोस्टन हार्बर पहुंच जाते हैं 7 समुद्र पार करके प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि जब उन्हें हार्ट अटैक आता है और वो सोचने लगते हैं कि हे कृष्ण मैं कैसे आपकी इच्छा पूरी करूंगा। जब आप महाप्रभु के रूप में आते हैं तो आप कहते हैं, पृथ्वी थे यत आदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मेरो नाम। पृथ्वी के हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में क्या होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर ये तो करने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है और मैं कुछ ही समय बाद अपने शरीर को त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, उनके सिर पे हाथ लगाया, उनके चेस्ट पे हाथ लगाया और कहा कि अभय चरण चिंता मत करो, ये कार्य करना तुमको तो सिर्फ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बनना है, एक यंत्र बनना है, कार्य मैं करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ में। तो आप देखिए भगवान हमारे साथ है, हमारे हृदय में विराजमान है। अर्जुन ने पूछा भगवान आप कहां रहते हैं, तो भगवान ने कहा ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ मायाया। हे अर्जुन मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, ईश्वरम सर्वभूतानाम सारे जगत का जो ईश्वर है, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति वो हृदय वाले देश में विराजमान है और क्या करते हैं, इस माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर हमें कभी इधर कभी उधर घुमाते हैं, जैसी इच्छा वैसे वैसे भगवान हमको नचाते हैं। इकला ईश्वर कृष्णा आर सब व्रत, यार ये छे नचाए से ताछे कर
नृत्य। जैसे जैसे भगवान की इच्छा होती है वैसे वैसे आदमी नाचता है, कभी इधर कभी उधर। कठपुतली के हाथ होते हैं ना, कठपुतलियां नाचती हैं, वो कठपुतली नचाने वाले के हाथ में होता है। कृष्ण चाहेंगे तो आपको भक्त बनाएंगे, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो आपको भक्त नहीं बनाएंगे। लेकिन इससे भी बढ़कर क्या है, कृष्ण तभी चाहेंगे जब आप चाहेंगे। आपकी शादी कब होती है? जबरदस्ती होती है जब आप चाहते हैं, जब चाहते हैं। ऐसा थोड़ी जबरदस्ती, क्या हुआ, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होके बांध रहे हैं दो लोगों को रस्सियों में, क्या हुआ, फेरे हो रहे हैं, फेरे हो रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, मैं नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो वैसे ही भक्त बनने के लिए भी कोई जबरदस्ती रस्सियां बांध के चलो लेक्चर में चलो। आपने अपना नाम लिखाया था ना, टिंग टोंग 12 बज गए, लेक्चर शुरू होने वाला है 1 बजे, चलिए हम नहीं जाएंगे, हमारे घर में कोई आने वाला है, रस्सी बांधी, कैसे नहीं जाओगे, चलो चलो। ये भक्ति नहीं है, भक्ति तो है प्रेम का संबंध। दौड़ा चला आए भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए, स्लो मोशन में भागे या फास्ट मोशन में भागे, बस भागता रहे, श्रवताम श्रीकताम कृष्णम, कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए भागता जा रहा हूँ, भागता जा रहा हूँ, भागता हूँ, सुनूंगा। और सुनने मात्र से क्या होगा, मेरे हृदय का शुद्धिकरण होगा, तब हम भगवान की सेवाओं में लग पाएंगे। ऐसी एक संत थे जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के अग्रज 6 गोस्वामियों में से एक थे। एक थे रूप गोस्वामी और दूसरे कौन थे, सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जब वृंदावन पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे, तो उनके मन में बड़ी ही इच्छा थी कि मैं भगवान के विग्रह की सेवा करूं। कभी एक पेड़ के नीचे रहते थे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे, और रात दिन भगवान के नामों का जप करते थे और भिक्षा मांगकर खाते थे, भिक्षाम देही। तो घर से कभी मिल जाता था रोटी सूखी हुई रात की बासी, कहीं मिल जाती थी दाल सड़ी हुई पुरानी बासी कल की, उसी से अपना दिन काटते थे और भगवान का भजन करते थे। तो आप सोचेंगे सनातन गोस्वामी बहुत गरीब थे इसलिए एक्सेप्ट कर लेते थे, नहीं। सनातन गोस्वामी राजा हुसैन शाह जो बंगाल का राजा था उसके फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब वो अपना बंगाल छोड़कर वृंदावन गए तो उनके पास एक नाव भर के सोने की अशर्फियां थी जो वो दान में देके आए थे। ऐसे विशाल पैसे वाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं वृंदावन में, भिक्षाम देही और भगवान का भजन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक एक अशर्फी हमें जीवन में वापस आसक्त कर देती है या खींच के ले आती है, एक एक रुपए के लिए वापस आना पड़ जाता है व्यक्ति को। हाँ, तो कितना धन दौलत हमने जोड़ा है वो हमें लौटा लाएगा वापस इसी संसार में। तो सनातन गोस्वामी एक दिन घूमते घूमते, एक चतुर्वेदी परिवार रहता था उनके घर के बाहर, निकलते हैं देखते हैं राधा मदन मोहन विग्रह से उनके बच्चे खेल रहे हैं, जैसे गुड्डे गुड़िया से खेला जाता है, मदन मोहन राधा, मदन मोहन राधा, टुम 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 ऐसे लड़ा खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी के साथ ऐसा व्यवहार, बड़ा उनको हुआ, कह रहे मेरा मन है कि मैं इनकी सेवा करूं। और ये सोचा ही था, रात को सोए तो रात को भगवान टोंग प्रकट हो गए और बोले सनातन कल सुबह जाओ और उनसे जाकर उस विग्रह की इच्छा प्रकट करो। तो सनातन गोस्वामी दूसरे दिन पहुंच जाते और कहते हैं मुझे ये विग्रह दे दीजिए राधा मदन मोहन, मैं इनकी क्या करूंगा, सेवा करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा ये तो हमारे परंपरागत विग्रह है, हमारे कुल के विग्रह है, हमारे पुष्टों की सेवा चल रही आ रही है, हम आपको ये नहीं दे सकते। तो उनके मना करने पर उनको बहुत दुख हुआ, बोले अच्छा कैसे भी, कह रहे नहीं। रात को मदन मोहन जी ने उस चतुर्वेदी परिवार जो मिस्टर चौबे थे उनके सपने में आकर कहा कल एक गोस्वामी आएगा उसको तुम मुझे दे देना। अब उन्हें बड़ा दुख हुआ, आप चले जाएंगे भगवान, आप चले जाएंगे हमारे घर से, कह रहे हाँ अब मैं चाहता हूं कि मैं सनातन गोस्वामी की सेवाएं स्वीकार करूं। अभी सनातन गोस्वामी के सपने में फिर से भगवान आए राधा मदन मोहन और कहते हैं मदन मोहन जी कि जाओ सुबह जाकर मुझे दोबारा मांगो। वो दूसरे दिन फिर जाते हैं, कहते हैं मुझे मदन मोहन दे दीजिए। तो कहते हैं ठीक है अगर चाहिए तो तुम उठा के ले जाओ, बड़े भारी विग्रह थे, उठते नहीं थे, बड़े हैवी, बहुत भारी थे। उन्होंने कहा अगर तुम इसे अकेले उठा सकते हो, क्योंकि जब हमने यहाँ लाए थे तो 2-3 भक्त मिलकर लाए थे, तो आप अकेले अगर इसे उठाकर और टीले के ऊपर ले जाकर पूजा कर सको, तो यमुना के किनारे एक टीला है, हम जाते हैं चढ़ के ऊपर सीढ़ियों का मंदिर, तो टीले के ऊपर अगर आप ले जा सको तो हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो गए और बड़ी स्विफ्टली जैसे रूई को उठाते हैं उन्होंने मदन मोहन को उठाया, कह रहे उड़ गए, कह रहे जाओ और चल दिए, और एक के ऊपर एक वो पार्ट टीले पे ले जाकर स्थापित कर दिए मदन मोहन।
अभी ये जो था ना ब्राह्मण चतुर्वेदी, ये सोचने लगा अरे मेरे विग्रह चले गए, मुझे कब भगवान मिलेंगे। तो वो वापिस आए और वापिस आकर मदन मोहन जी को बोलने लगे, मदन मोहन जी वापिस चले, कह रहे नहीं 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 मैं तो कंफ्यूज हो गया था, स्वप्न तो झूठ होते हैं, मेरे विग्रह वापिस दो। तो गोस्वामी जी ने कहा सनातन ने, ठीक है अगर आप वापिस ले जाना चाहते हैं तो उठाइए और ले जाइए। तो फिर वो चतुर्वेदी ने खूब जोर लगाया लेकिन उठाने पर वहीं के वहीं स्थापित हो गए भगवान। हाँ राधा मदन मोहन भगवान की, ऐसे भगवान है भक्त के लिए वहां दृढ़ हो जाते हैं। और फिर एक दिन एक कपूर नाम का बिजनेसमैन था, वो नमक का व्यापार करता था, तो उसकी नाव जा रही थी यमुना नदी के किनारे और जैसे वृंदावन का राधा मदन मोहन टीला आया, टीला था मंदिर नहीं था, और जैसे ही टीला आया उसकी नाव रेत में फंस गई यमुना सैंड के अंदर, और सैंड में उसकी नाव फंस गई तो वो सोचने लगा कैसे निकलेगी, क्योंकि कल अगर मैंने आगरा में जाकर डिलीवरी नहीं दी तो मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा, मेरे पैसे लॉस्ट हो जाएंगे। अब वो ये सोच ही रहा था तो किसी ने बोला यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं टीले पे, सनातन बाबा, आप वहां जाओ उनसे प्रार्थना करो, वो कुछ कर सकते हैं। तो सनातन बाबा के पास आए, सनातन बाबा मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा देखो मैं तो खुद ही भिक्षु हूं, मदद करने वाले तो कौन है, मदन मोहन, राधा मदन मोहन, जाओ इनसे प्रार्थना करो ये कुछ कर देंगे। तो मदन मोहन जी के सामने प्रार्थना करी तो भगवान ने उससे बोला, उस व्यापारी से, देखो कपूर अगर तुम्हारा व्यापार चल पड़ा, ये नमक बिक गया तो इसका जितना प्रॉफिट होगा क्या तुम मुझे दोगे। उस सिचुएशन हो गया, लॉस होने से तो अच्छा कम से कम सेवा में लग जाए, कृपा तो मिल जाएगी। हाँ हाँ दूंगा दूंगा, नाव चलाओ नाव चलाओ। तो इतने में ही बस उसने हाँ बोला था, नीचे से उसके आदमी चिल्लाने लगे, कपूर जी नाव निकल गई और नाव निकल गई और आगरा पहुंच गई और सारा नमक का व्यापार अच्छा हुआ और उससे जो धन आया तो उसने वापिस आकर जैसा कहा, आज के लोग नहीं थे, 500 साल पहले की बात है, अगर आज के होते तो शायद नहीं आते, आते तो कुछ कम देते, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा पैसा दिया और उससे राधा मदन मोहन टेम्पल बना, बहुत सुंदर हाइट के ऊपर मंदिर है वृंदावन परिक्रमा मार्ग के ऊपर, तो वो मंदिर बन गया। तो ऐसे जो मदन मोहन थे, तो जब औरंगजेब का हमला हुआ तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तो कोई भी नहीं है, अब यहां से मदन मोहन जी को कैसे ले जाया जाए, तो उन्होंने फिर विग्रह को उठाया, फिर स्विफ्टली उठ गए, जाना चाहते थे चल दिए, फिर उनको ले गए राधाकुंड, राधाकुंड के किनारे रख दिया और फिर वहां पर एक दिन रखकर फिर उनको ले गए कामावन, फिर कामावन में रखा उनको 5 दिन, फिर 5 दिन रखकर जयपुर ले जाना चाहते थे, लेकिन जिस रास्ते में जयपुर पड़ता था जयसिंहगढ़ पैलेस, उस रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया और औरंगजेब की सेनाएं वहां से जा रही थी, तो उनको डाइवर्ट करना पड़ा और कहां जाना पड़ा, करौली, और करौली के राजा थे माधव सिंह, और माधव सिंह सोच रहे थे कि जय सिंह ने तो सारे के सारे विग्रह अपने पास रख लिए, एक विग्रह मुझे भी मिल जाता काश, और सोच ही रहे थे काश मदन मोहन मेरे पास होते, और थोड़ी देर बाद देखा ब्राह्मण वृंदावन से बुलक काट बैलगाड़ी में बैठकर किसको लेके आ गए, मदन मोहन को ले आए, जैसी इच्छा वैसे भगवान उठाते, राधा मदन मोहन भगवान की। तो भगवान अपने भक्त के हर इच्छा को पूरा करते हैं, इकला ईश्वर कृष्णा आर सब व्रत, यार इच्छा नाचे सताचे करे नृत्य, जैसी जैसी उनकी इच्छा होती है व्यक्ति नाचता रहता है, तो भगवान हर इच्छा को पूरे करने वाले भगवान है राधा मदन मोहन। तो इस तरह से राधा मदन मोहन करौली पहुंच जाते हैं। तो आपने अनेकों अनेकों भगवान की लीलाएं सुनी, तो अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक सेवा को अपनाइए। तो हमारे कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेवा है, 3 सेवाएं बताई गई, पहली भगवान के नाम जप को करना, दूसरा भगवान के विग्रह की सेवा शास्त्रों को पढ़ना, हाँ, और तीसरा भक्तों का संग करना। भक्तों का संग करें तभी, जैसे ये जो संग है इसको कहते हैं एसोसिएशन, भक्तों का संग, इस भक्त संग में आएंगे ना तो फिर जीवन में परिवर्तन आएगा। शराबियों के साथ बैठेंगे तो मन करेगा यार चल एक हो ही जाए, पिक्चर वालों के संग मन करेंगे तो करेंगे चल एक पिक्चर देख ही ले, कौन सी आई है अभी नई लेटेस्ट मूवी, बाजीराव मस्ताना मस्तानी बाजीराव मस्तानी, चलो देख लेते हैं मन करेगा, लेकिन भक्तों के संग में आएंगे तो मन करेगा चलो चलो एक कथा सुनी लेते हैं, भक्त कहेंगे चलिए ना कथा सुनकर आते हैं। औरंगजेब जो राजा था
औरंगजेब अपने ये जो बताते हैं कि सिकंदर, सिकंदर महान, उस समय सिकंदर महान पूरे विश्व को जीत रहा था और जीतते 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 उसने सारे विश्व को जीत लिया था, लेकिन इंडिया में जब वो आया तो उसके कैंसर डिसीज हो गया था, उसको वमन रोग हो गया था, उल्टियां करता था, खून की उल्टियां करता था। और फिर जब वो वापस पहुंचा सिकंदर, तो उसने अपने लोगों से कहा कि मेरी तीन इच्छाएं मरने से पहले उन तीन इच्छाओं को पूरा करना। क्या? पहली इच्छा कि जब मैं मर जाऊं, बस अंतिम समय आ गया, लास्ट टाइम चल रहा है, तो मेरी कब्र तक जाने में, कब्रिस्तान तक मेरी बॉडी को ले जाएं, तो क्या करना, पहला कार्य करना कि जो मेरा वैद्य है, मेरा जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो मेरे साथ साथ चले। दूसरा कि जितना भी धन मैंने पूरे विश्व से इकट्ठा किया उसकी अशर्फियां रोड में फेंकते हुए जाना, ऐसे सोने के सिक्के चन 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 सब जगह फेंकना, और जब मैं पहुंच जाऊं कब्रिस्तान में तो कब्र के अंदर मेरी बॉडी को रख के मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। तीन इच्छाएं थी। तो उनके लोगों ने पूछा, सिकंदर ये क्या इच्छा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो उसने कहा, पहला कारण कि डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन मृत्यु को विजय प्राप्त नहीं करा सकता, तो ये मैं मर रहा हूं लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहा और मुझे डेड बॉडी को कब्रिस्तान तक ले जाने में मेरी मदद कर रहा है। दूसरा कि मैंने जितना भी सिक्का, जितना भी पैसा, जितनी भी अशर्फियां, जितना भी धन कमाया, उसका एक सिक्का भी मैं अपने साथ वापस लेकर नहीं जा रहा। और दूसरा, तीसरा कि मैं खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जा रहा। कहते हैं इकट्ठे कर दुनिया के घर, सभी मुल्कों का माली था, सब मुल्कों का हेड बन गया था, इकट्ठे कर दुनिया के घर, सभी मुल्कों का माली था, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था, बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड। तो इस एम्प्टी हैंड में रुपीज और नोट्स की बजाय क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी
जी, जैसे मैं दो माला हर रोज करता हूँ, लेकिन अगर आज मेरी दो माला नहीं हुई तो फिर कल मैं चार कर सकता हूँ?
आज अगर रोटी नहीं खाओगे तो कल खा सकते हो? हाँ, तो अपने रोज नियमित जैसे रोटी रोज खाते हैं उसको दो दिन पेंडिंग नहीं करते हैं कि भाई तीन दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है, आज मैं आठ खाऊंगा, ऐसा होता है? नहीं होता। एवरी डे यू नीड सम डाइट। तो इस आत्मा का भोजन है नियमित मालाओं का जप करना, चाहे दो फिक्स करो या चार फिक्स करो, पर डू योर राउंड्स रेगुलरली, अपने नियमित जप करिए। ये नहीं है पेंडिंग कर लिया। एक व्यक्ति मुझे मिला था, वो हमारे साथ जब मैं पहले जॉब किया करता था आज से 6-7 साल पहले, तो हमारे कॉर्पोरेट में एक व्यक्ति था, उसको मैंने चैंटिंग सिखाया, भजन करना सिखाया, वो भक्त बन गया, मेरे साथ मंदिर भी आता था। फिर एक दिन हम दोनों मंदिर गए तो कहता है आज प्लीज मैं ना बात नहीं करूंगा। क्यों? कह रहा है आज मेरे को ना चैंटिंग करनी। मैं कहा वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ना किनारे बैठ गया। अब मैंने 16 माला अपनी खत्म करी, मैंने कहा चल अब चलते हैं प्रसाद लेंगे। नहीं नहीं अभी तो मेरी माला बाकी है। बड़े मग्न होकर कर रहा है, दोपहर हो गई, शाम हो गई, मैंने कितनी माला कर रहा है आज? कह रहा है पिछले 15 दिन से पेंडिंग चल रही है, मैं पेपर में। तो ये कोई तरीका नहीं है। हा? जैसे शिव जी के मंदिर में एक बार हमने देखा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हैंडपंप चलाता है, पानी भरता है और फिर शिव जी के ऊपर, फिर हैंडपंप चलाता है, बाल्टी भरता है, फिर ऐसे 10-12 बाल्टी डाल दी, पूरे शिव जी के शिवलिंग के पास पानी ही पानी। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? कह रहे जी मेरा रोज का नियम है कि मैं रोज शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, पिछले 15-20 दिन से मुझे टाइफाइड हो गया था तो आ नहीं पा रहा था, तो अपने 15-20 दिन का कोटा पूरा कर रहा हूँ। तो ये तरीका भक्ति का ठीक नहीं है। भक्ति का तरीका है नियमित रूप से, जैसे स्नान करते हैं रोज, खाना खाते हैं रोज, ऑफिस जाते हैं, वैसे ही भजन सर्वोपरि है, ये मानेंगे देन योर लाइफ विल बी हैप्पी। और किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी,
गुरु मंत्र जपना चाहिए या गोविंद का मंत्र, जैसे श्री राधे
श्री राधे? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्या नाम है प्रभु जी आपका? मदन लाल। तो मदन लाल प्रभु जी ने प्रश्न पूछा कि श्री राधे जपना चाहिए गुरु मंत्र या फिर भगवान गोविंद का मंत्र जपना चाहिए? तो मंत्र तो सारे अच्छे हैं, लेकिन ये जो हरे कृष्ण है इसको बोलते हैं महामंत्र।
इस महामंत्र के अंदर चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई भी मंत्र हो आपका, हाँ वो सारे द्वादश अक्षर मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो या फिर मृत्युंजय मंत्र हो, इस महामंत्र में सारे मंत्र समाये हुए हैं। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, महामंत्र का जप करने से आपको सभी मंत्रों के सार का फल मिलेगा। अभी जो पॉजिटिव बुद्धि का होगा ना, इंटेलिजेंट माइंडेड बुद्धिमान, क्या करेगा, उस भजन को पकड़ेगा जिसमें कम टाइम लगे और ज्यादा फल मिले, है ना। हम यही तो बैंक में भी जाते हैं जी, वहीं एफडी बनाएंगे जहां पर कम टाइम में ज्यादा इंटरेस्ट मिले। तो यहां पर वही है, महामंत्र जपने वाले व्यक्ति को सारे मंत्रों का फल भी मिल रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। अभी एक एक मंत्र की माला सब करें, इससे अच्छा है कि 16 माला इसकी कर लें 2 घंटे में और जीवन शाश्वत बना लें अपना। जन्म मृत्यु जरा गति से भी छूटेंगे, भगवान की कृपा भी मिलेगी, आनंद भी आएगा। हाँ, एक कलयुग के लिए रेफरेंस, जैसे फिजिक्स की रेफरेंस बुक होती है, केमिस्ट्री रेफरेंस बुक होती है, मैथमेटिक्स रेफरेंस बुक होती है, ऐसे कलयुग के लिए रेफरेंस बुक है, उसका नाम है कली संतरणन उपनिषद। उपनिषद मतलब ही है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, है ना। गीतो उपनिषद मतलब भगवत गीता, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ऐसे ही है कली संतरण उपनिषद। उस उपनिषद में बोला गया है इति षोडक शक नामनम कली कल्मश नाशनम नत्परतरोपाया सर्वविदेशु दृश्यते। इति षोडक शक नामनम, 16 नामों वाला मंत्र होना चाहिए। कली कल्मश नाशनम, कलयुग के कल्मश को नाश करने की शक्ति है। नत परतरोपाया, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है कलयुग में। सर्व विदेशु दृश्यते, सारे वेद, 4 वेद, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ने दर्शाया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण मंत्र कलयुग के कली संतरण उपनिषद में दिया गया। पद्म पुराण क्या कहता है, पद्म पुराण कहता है द्वादश अक्षरम मंत्रम षोडश नामकान्वितम प्राजपन वैष्णवम नित्यम राधा कृष्णम स्थलम लभे। द्वादश अक्षरम मंत्रम, जिस मंत्र में 32 अक्षर हो, द्वा मतलब 30, तिस मतलब 30, 32 सिलेबल का मंत्र कौन सा है, ह रे कृष्णा, ह रे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे 32 बन जाते हैं। द्वादश अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम, और अगर उन्हें इकट्ठा कर दो तो 16 नाम बनने चाहिए। तो फिर अगर कोई व्यक्ति इसको जपता है, प्राजपन वैष्णवम नित्यम, कैसे जपना है, वैष्णवों के बताए रास्ते के अनुसार, फिर क्या होगा, राधा कृष्णम स्थलम लभेत, उस व्यक्ति को राधा कृष्ण के स्थल गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। ये पद्म पुराण में वर्णन है। तो भागवत पुराण, पद्म पुराण, शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, तो हमें हरे कृष्ण मंत्र की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न, जी माता जी। देखिए, राम जी की मूर्ति है हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के अंदर, ऑल्टर में राधा पार्थ सारथी हैं, उल्टे हाथ में गौर निताई हैं और सीधे हाथ में सीता राम लक्ष्मण भी हैं। तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा जो दूसरा मंदिर है दिल्ली में, बड़ा मंदिर इस्कॉन का, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, ग्रेटर कैलाश के पास, उसमें सीता राम लक्ष्मण भी हैं। पर प्रभुपाद जी कहते थे कि जो ये राम है ये वो वाले राम नहीं है, रामचंद्र वाले राम। इस राम का मतलब है क्या, समझना पड़ेगा। हरे का मतलब है राधा रानी की शक्ति, जिसको कहते हैं कृष्ण की शक्ति, हरा, कृष्ण की शक्ति को बोलते हैं हरा, और जब उन्हें संबोधन करते हैं तो कहते हैं हरे। कृष्ण का मतलब है वो भगवान जो सबसे ज्यादा आकर्षण प्रदान करते हैं, सर्व आकर्षक इति कृष्णा, और जो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं, रम्यते इति राम, जिसमें रमण करने का मन करे, जिनमें आनंद आए, जिनके नाम लेने में, जिनके दर्शन में आनंद आए, उनको कहते हैं राम। तो ये बोले राम कहने का मतलब ये नहीं कि धनुष बाण वाले राम, राम मतलब आनंद प्रदान करने वाले राम। तो राधिका मधुसूदन, राम राधिका, रा से राधिका, म से मधुसूदन, राधिका मधुसूदन जो आनंद प्रदान करते हैं वो सबसे सर्वोपरि आनंद है। तो इसलिए राम का अर्थ है राधिका मधुसूदन, इसमें वो वाले राम नहीं है, रामचंद्र वाले। लेकिन अगर आप वो वाले रामचंद्र भी सोचें तब भी कोई हानि नहीं है, लेकिन असलियत में कृष्ण मतलब कृष्ण और राम मतलब भी कृष्ण। राधिका मधुसूदन, मधुसूदन राक्षस का वध करने वाले राम।
अच्छा ठीक है, तो बस अभी हो रहा है प्रसाद, हो गया हमारा लेक्चर, तो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? यस, हाँ, इकला प्रभु कृष्ण आर सब व्रत यार ये छे नचाए से ताचे यार ये छे नचाए, ये छे नचाए, ये छे मतलब ये जिस तरह से नचाना चाहते हैं से ताचे करे नृत्यवती वैसे ही नाचता है, ये छे नचाए जैसे भगवान नचाना चाहते हैं से वो तेछे करे नृत्य आदमी वैसे नाचता है, वो बोलेंगे चल इधर नाच नाचेगा आदमी, चल इधर नाच उधर नाचेगा, तो रीति का भगवान जैसे चाहते, इसलिए भगवान कृष्ण ही खाली भगवान है, बाकी सब उनके कौन है, व्रत मतलब दास, उनके सर्वेंट है। और किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, राघव प्रभु। हाँ, गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में आने से पहले ये हमारे जो संप्रदाय, इसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। माधव मतलब माधवाचार्य, हर बताया गया कलयुग में चार ही संप्रदाय हैं जिनसे हमको दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पहली संप्रदाय है जिसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, दूसरी संप्रदाय जिसका नाम है श्री संप्रदाय, तीसरी संप्रदाय जिसका नाम है कुमार संप्रदाय, चौथी संप्रदाय है जिसका नाम है क्या, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया शिव जी को, कुमार संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया चतुर कुमार को, और श्री संप्रदाय में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया लक्ष्मी जी को, और ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। तो हम जो संप्रदाय में आते हैं इसको कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय का मतलब है चैतन्य महाप्रभु, जो गौड़ीय गौड़ देश में गोरे रंग के भगवान आते हैं तब ये बन जाती है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से पहले ही जयदेव गोस्वामी 300 वर्ष पहले आ गए थे, ये आए थे 12th सेंचुरी में, और भगवान चैतन्य महाप्रभु आए 15th सेंचुरी में, तो दोनों की सेंचुरी अलग है 300 वर्ष पूर्व। तो इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में नहीं आए, ब्रह्म माधव संप्रदाय। गौड़ीय तो बाद में बनती है 500 साल पहले, तो इसलिए फिर ये टोटल बन जाती है ब्रह्मा माधवाचार्य, गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु, तो फिर ये बन जाती है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो इसी संप्रदाय को कहा गया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारी संप्रदायें लुप्त हो जाएंगी कलयुग में, खाली एक ही संप्रदाय बचेगी ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आकर इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करी है। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाकर दीक्षा ग्रहण करी, इसलिए ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक संप्रदाय बन जाएगी, और आने वाले समय में सारे संप्रदाय इसी संप्रदाय में मिल जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति आज इस संप्रदाय में जुड़ा है वो सबसे उत्तम मार्ग को पे चल रहा है अपने जीवन के। ठीक है, हाँ 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 हाँ, सर्वोपरि कृष्ण, ठीक है।